ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला अध्याय 4 श्री माधवेन्द्रपुरी की भक्ति और प्यार संख्या 87। मेरे पीछे बोलिए।
सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिल सेवा मध्य सब नियोजिल सकल ब्राह्मण पुरी वैष्णव करिल सेवा मध्य सब नियोजिल सकल ब्राह्मण पुरी वैष्णव करिल सेवा मध्य सब नियोजिल।
अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को माधवेन्द्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगाया। तो जो कथा प्रसंग है वो क्या चल रहा है, माधवेन्द्रपुरी ने गोपाल जी की स्थापना की है। गोपाल जी ने उनको सपना दिया था और ये कहा था कि मैं तुम्हारी सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं और कष्ट भोग रहा हूं, बड़े कष्ट के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे यहां से निकालो, यहां पर मुझे बहुत गर्मी सर्दी का कष्ट हो रहा है। तो माधवेन्द्रपुरी ने उस सपने के अनुसार उस स्थान से गोपाल जी को निकलवाया और उनकी जो है प्रतिष्ठा, उनकी स्थापना कराई। तो यहां पर बताया गया कि वहां के जितने निवासी ब्राह्मण थे उनको पुरी यानी माधवेन्द्रपुरी ने क्या कर दिया, वैष्णव बना दिया। ब्राह्मणों को क्या बना दिया, वैष्णव बना दिया। और सही सेवा मध्य सभा नियोजल, सभा सभा का मतलब सभी को उनकी विभिन्न सेवाओं में लगाया, गोपाल जी की विभिन्न सेवाओं में लगा दिया है ना। तो बहुत बड़ा कार्य था वैष्णवीकरण। माधवेन्द्रपुरी ने ब्राह्मणों को क्या कर दिया, वैष्णवीकृत कर दिया, वैष्णवाइज है ना कर दिया है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, शास्त्रों का कथन है षट कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव। क्या है प्रभुपाद जी जो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं उसमें क्या है, षट कर्म निपुण विप्रो, विप्र जो है छह कर्मों में निपुण हो, मंत्र तंत्र में बहुत निपुण हो लेकिन तो भी वो अवैष्णव हो सकता है ना। विप्र छह कर्मों में निपुण है। तो हमने पिछली बार भी बताया था कि ब्राह्मण के तीन स्तर हैं, एक द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव है ना। तो यहां पर जिन ब्राह्मणों की बात कही गई है वो कैसे थे, वो विप्र थे और उनको माधवेन्द्रपुरी ने क्या कर दिया, वैष्णव बना दिया है ना। या तो द्विज थे या विप्र थे, वैष्णव नहीं थे और माधवेन्द्रपुरी ने उनको क्या कर दिया, वैष्णव बना दिया है ना। तो विप्र की योग्यता क्या है, षट कर्म निपुण, छह प्रकार के कर्मों में निपुण। और छह प्रकार के कर्मों की व्याख्या प्रभुपाद जी बताएंगे आगे चल करके बताएंगे। तो जो द्विज है तो उसके अंदर एक ही योग्यता होती है क्या, तपस्या की। तो छह प्रकार के जो कर्म हैं उनमें से यजन और याजन, पूजा करना पूजा कराना, संस्कारात द्विज उत्तेजे, संस्कार के द्वारा कोई व्यक्ति द्विज बनता है तो वो जो है द्विज की योग्यता है। फिर द्विज से ऊपर जो विप्र की योग्यता है वो क्या है, पठन और पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, तो विप्र की योग्यता है ठीक है ना। और दान प्रतिग्रह ये अधिकार द्विज को भी है और विप्र को भी है, दान लेना और दान देना, तो ये अधिकार है, ये तो अधिकार है ये जो है दो योग्यताएं द्विज की हैं, यजन याजन और चार योग्यताएं हैं विप्र की, पठन पाठन, जिसको हमने कहा द्विज की योग्यता है तपस्या और विप्र की योग्यता है तपस्या और विद्या, है ना। तो तपस्या के अंदर यजन याजन है और विद्या के अंदर पठन पाठन है, है ना। और दान प्रतिग्रह ये अधिकार है, द्विज का भी अधिकार है और ब्रह्म और विप्र का भी अधिकार है, है ना। तो हम आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भले ही ब्राह्मण जाति में उत्पन्न या योग्य ब्राह्मण अपने कर्मों में पटु क्यों ना हो, है योग्य ब्राह्मण मतलब विप्र के धरातल तक, विप्र के धरातल पर क्यों ना हो, विप्र के धरातल पर वो छह प्रकार के कर्मों में पटु हो सकता है, तो भी अभी वैष्णव नहीं बना, है सटकर्म निपुण विप्रो, विप्र जो है छह प्रकार के कर्मों में निपुण, है ना। अभी आजकल तो बहुत से ब्राह्मण केवल कहलाते हैं लेकिन उनके अंदर वो तपस्या का ही गुण नहीं है, तपस्या का ही गुण नहीं है, है ना। तपस्या के अंदर पवित्रता भी आ जाती है, और चार प्रकार के जो जो नियम है वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो चार प्रकार के नियम ही तोड़ते हैं, नशा करते हैं, है ना, नशा है व्यभिचार है कोई भी अगर करते हैं तो फिर तो वो द्विज भी नहीं है, तो फिर विप्र कहां से बन सकता है, वैष्णव कहां बन सकता है, उसके अंदर द्विज की भी योग्यता नहीं है, मतलब ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं इस कारण वो अपने को ब्राह्मण घोषित करते हैं, है ना। तो वो तो ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते, ब्राह्मण कहलाने की तो बात ही नहीं उठती ऐसे लोगों के लिए, है ना। कम से कम ब्राह्मण को जो है द्विज होना चाहिए, और द्विज का मतलब है तपस्या हो उसके अंदर होना चाहिए, शुद्धिकरण होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, पूजा करना पूजा कराना ये सब विधि पूर्वक उसको मालूम होना चाहिए, है ना। या हम अपने शब्दों में कहें कि चार नियमों का पालन करे और सोलह माला जाप करे, आप समझे ना, तो ये जो है मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वो आवश्यक नहीं कि वो वैष्णव है, अवैष्णव गुरु न स्यात, तो गुरु जो है विप्र भी कोई व्यक्ति हो, द्विज तो बहुत दूर है, यहां तक कि विप्र के धरातल पर भी कोई व्यक्ति है लेकिन वैष्णव के धरातल पर नहीं आया तो गुरु ना बने, अवैष्णव गुरु न स्यात। और वैष्णव सुपचो गुरु, अगर वैष्णव है तो वो चांडाली क्यों ना हो, वो गुरु है। अब चांडाल का मतलब क्या है, चांडाल परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन वो चांडाल का कर्म नहीं कर रहा है, यहां इसका ये मतलब नहीं चांडाल का कर्म कर रहा हो यानी कुत्ता खाता हो, कुत्ते का मांस खाए नहीं, अगर वो ऐसे परिवार में भी पैदा हुआ है लेकिन अभी वो क्या हो गया है, वैष्णव बन चुका है ना, तो वो जो है चांडाल भी अगर वैष्णव बन जाए तो वो गुरु, उसको गुरु बना सकते हैं, उसको गुरु बनाना चाहिए, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं उसके छह ब्राह्मण कर्मों का उल्लेख हुआ है, छह ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण कर्म मतलब विप्र कर्म है कि नहीं, जिसके चार कर्म हैं, दान प्रतिग्रह ये तो अधिकार है और यजन याजन ये जो है उसकी योग्यता है द्विज की, और विप्र की छह कर्म है, यजन याजन पठन पाठन और दान प्रतिग्रह अधिकार है, है ना। तो छह उसके छह ब्राह्मण कर्मों का उल्लेख हुआ है, उसे पठन अर्थात वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उसे अन्यों को वैदिक साहित्य पढ़ाने में समर्थ होना चाहिए, ये पाठन है। पठन माने पढ़ना अध्ययन करना, और पाठन का मतलब पढ़ाना अध्ययन कराना। उसे विभिन्न देवों की पूजा करने तथा वैदिक अनुष्ठान करने यजन में भी पटु होना चाहिए, तो कई प्रकार के वैदिक अनुष्ठान हैं, अभी कलयुग में वो सब मना है लेकिन बहुत सी जो है विधियां हैं, वैदिक पूजा की विधियां हैं, तो इसको कहते हैं यजन। इसी यजन के कारण समाज का अग्रणी होने से ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के लिए वैदिक अनुष्ठान पूरे करता है, तो ये जो वैदिक अनुष्ठान है ये किस लिए होते हैं, समाज के लिए परिवार के लिए ये शुभ होते हैं, अनेक प्रकार की जो आपत्तियां हैं विपत्तियां हैं वो टल जाती हैं इन अनुष्ठानों के द्वारा जो पूजा पाठ जो किया जाता है। तो इसलिए जो है जो ये द्विज जो कि निजन नियोजन करता है तो स्वयं पूजा करता है और दूसरों के लिए भी पूजा कराता है, दूसरों से पूजा कराता है। तो ये जो कार्य हैं ये पवित्र हैं। इस तरह औरों को उत्सव संपन्न कराने में सहायता करना यजन कहलाता है ना, उत्सव संपन्न कराना पूजा कराना इसको यजन कहते हैं। आगे दान तथा प्रतिग्रह अन्य दो कर्म है ना, ठीक है। ब्राह्मण अपने यजमानों से मुख्यतया क्षत्रियों वैश्यों तथा सूत्रों से सभी प्रकार की भेंटें स्वीकार करता है, इसे कहते हैं प्रतिग्रह, दान लेना प्रतिग्रह है ना। किंतु वो सारे धन को अपने पास नहीं रखता, वो आवश्यकता भर के लिए रखकर शेष भाग अन्यों को दे देता है दान। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाए ये छह कर्म है जो विप्र के हैं। आगे ऐसे योग्य ब्राह्मण को अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। अब यहां पर यजन का जो है प्रभुपाद ने अर्थ है अर्च विग्रह की पूजा नहीं बताई, अर्च विग्रह की पूजा नहीं मानी यजन। यहां पर यजन का मतलब है जो सामान्य पूजा की विधियां हैं या किसी देवता की पूजा है या कुछ और भी जो उत्सव होता है समारोह होता है तो वो उस प्रभुपाद ने माना है। लेकिन अर्च विग्रह की पूजा राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा तो ये जो है वैष्णव, जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव के धरातल पर ना आए तब तक उसे नहीं है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे योग्य ब्राह्मण को अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है ना। तो वैष्णव बनने के लिए क्या है, विप्र से ऊपर वैष्णव कब बनता है? हमने बताया था कि तपस्या विद्या और विनय, यहां पर है विनय है ना। और विनय का मतलब क्या है कि कृष्ण को भगवान स्वीकार करना, परमेश्वर स्वीकार करना, अपने को दास स्वीकार करना, ये तो है ना विनम्रता है ना। और फिर विनम्रता में फिर ये भी आ जाता है कि भगवान को सब प्राणियों में जान करके सब प्राणियों का सम्मान करना, प्रत्येक प्राणी का सम्मान करना, तो ये भी विनय के अंदर आ जाता है। तो ये जो है वैष्णव के लक्षण होते हैं विनय के है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव होना आवश्यक है, अतः वैष्णव का स्थान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अगर वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण तो तीनों है, द्विज भी विप्र भी वैष्णव भी, लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो किसकी, विप्र की, विप्र हैं या द्विज हैं है ना। तो वैष्णव का स्थान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। आगे माँ देवेंद्रपुरी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से इसकी पुष्टि होती है कि कोई ब्राह्मण कितना ही पटु क्यों ना हो, जब तक वो वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं होता तब तक वह पुरोहित या विष्णु विग्रह का सेवक नहीं बन सकता है ना। गोपाल के विग्रह की स्थापना करने के बाद माँ देवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर लिया। तो यहां पर इस बात को समझना है कि वे ब्राह्मण थे उन दिनों, वे लोग ब्राह्मण थे, चाहे वो द्विज के धरातल पर हो या विप्र के धरातल पर हो, लेकिन वो थे। द्विज से नीचे का धरातल किसी का नहीं था, द्विज से नीचे का धरातल का मतलब ब्राह्मण नहीं है ना, तपस्या नहीं, अगर वो विद्वान भी नहीं है, अगर उसके पास विद्या नहीं है तो भी अगर उसके अंदर तपस्या है, तपस्या का गुण है, तो वो भी जो है दान लेने का अधिकारी है और सम्मान का अधिकारी है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है ये बात कही है कि विद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामे की तनु, चाहे उसके अंदर विद्या हो ना विद्या ना हो, लेकिन ब्राह्मण मेरा शरीर है, तो जो है भगवान का आदेश है। तो यहां पर इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो अगर वो शास्त्र नहीं जानता है, इसका मतलब है कि जो ऐसे लोग हैं जो तपस्या ही नहीं करते हैं ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण के जीवन में जो आवश्यक नियम है, पवित्रता के नियम है, इनका ही पालन नहीं करते हैं, तो उनको भी जो इसी में घसीट लिया जाए। तो आजकल तो यही इसका यही मतलब माना जाता है ना। तो आजकल के ब्राह्मण जो है उस धरातल पर नहीं है, उस समय मुसलमानों का राज्य था है ना, तो मुसलमानों ने भी जो है वैदिक संस्कृति इस प्रकार से खत्म नहीं कर पाए। हालांकि तलवार के बल पर वो मुसलमान बनाते थे, लेकिन तो अभी वैदिक संस्कृति इस प्रकार खत्म नहीं कर पाए जिस प्रकार से आजकल जो है थोड़े ही समय में टीवी ने कर दिया है ना, बिल्कुल खत्म कर दिया है ना, और लोगों को बिल्कुल पशु के धरातल पर ला दिया है ना, कुत्ते बिल्लियों के धरातल पर ला दिया है ना। अब ऐसे धरातल पर भी लोग जो है अपने को ब्राह्मण कहें तो ये हंसी की बात है ना, ये तो हंसने की बात है। ये माधवेंद्रपुरी के समय में जो लोग थे वो ब्राह्मण फिर भी कहलाने के योग्य थे, चाहे वो द्विज के धरातल पर हो या विप्र के धरातल पर हो, लेकिन माध्यमिकपुरी ने उनको क्या कर दिया, वैष्णव के धरातल पर लाया है ना। आगे माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर लिया। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए अर्चा विग्रह संबंधी विविध सेवा कार्य नियत कर दिया है ना, अर्चा विग्रह संबंधी विविध सेवा कार्य नियत कर दिया। क्यों? क्योंकि जो अर्चा विग्रह हैं ये क्या है, वास्तव में ये अर्चावतार हैं, ये भगवान जो है स्वयं कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं अर्चा विग्रह के रूप में है ना। तो उनकी जो सेवा है वो कैसी होनी चाहिए, उस भाव से होना चाहिए, कम से कम विनम्रता का भाव तो होना चाहिए। अगर स्नेह प्रेम अगर नहीं प्रकट होता तो कम से कम विनम्रता हो तो होनी चाहिए, सेवा की भावना तो होनी चाहिए। भावग्राही जनार्दन, तो भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में भावग्राही हैं है ना, तो ये जो है मतलब बहुत सेंसिटिव है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान का श्रृंगार करता हो या कोई भगवान के लिए भोग बनाता हो या कोई भगवान की पूजा करता हो, उसके अंदर अगर भाव नहीं है, है ना, तो अर्चा विग्रह के लिए वो क्या हो जाता है, भार बन जाता है है ना। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किसी घर में, तो एक माता जी थी जो सहायता करती हैं, तो घर में अर्चा विग्रह हैं वो सहायता करती हैं, तो उनके अंदर भाव नहीं था, तो जितनी भी जो है उन्होंने चपातियां बनाई वो सब जमीन में गिर गईं, और जो है उनका जो बेलन है वो भी टूट गया, वो नहीं कुछ कर पाए है ना। तो कभी भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में ऐसी लीला प्रकट करते हैं, अगर किसी का भाव नहीं है तो उसकी सेवा में बाधा डाल देंगे कि वो सेवा कर ही नहीं पाएगा है ना। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं होती हैं अर्चा विग्रह के रूप में, भगवान जो है बहुत लीलाएं करते हैं, और वे जो है कई प्रकार की मांगे करते हैं कि मुझे ये दो वो दो, जिस प्रकार का भाव आपका वो देखते हैं उस प्रकार के भाव में वो मांगते हैं है ना। तो फिर वो विनम्रता की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो स्नेह इतना प्रकट हो जाता है कि भगवान को अपने से छोटा मान के, अपना बच्चा मान करके जो भक्त लोग हैं वो उनकी सेवा करते हैं है? तो भगवान को डांटते हैं या कभी जो है उनकी निंदा करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार भगवान उस प्यार को जो है वो विनम्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं है ना। कि कोई भक्त विनम्रता पूर्वक उनकी स्तुति करता है, प्रणाम करता है, लेकिन वे जो भक्त हैं वो तो उनको डांटते हैं और उनसे हंसी मजाक करते हैं और छोटा सा बच्चा मानते हैं, तो भगवान को वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है वैष्णव के धरातल पर ही कोई व्यक्ति जब विनम्र बन जाता है तब फिर और आगे उसके भाव विकसित हो सकते हैं, सखा भाव शांत भाव से सखा भाव और क्या है, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव है ना। तो ये सब जो भाव हैं तो ये जो विकसित होते हैं तो ये जो है वैष्णव के धरातल पर ही जब कोई व्यक्ति आता है तब कहीं ये सब चीजें होती हैं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं किसी भी अर्चा विग्रह की रखवाली के लिए 4 बजे प्रातःकाल से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कम से कम 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए है ना। तो प्रभुपाद ने जितने मंदिर बनाए हैं इसी प्रकार से, तो उसको क्या है, उसको डीटीएस डिपार्टमेंट अलग बना दिया, मंदिर में कई भक्त हैं सेवा करने वाले, उसमें डीटीएस डिपार्टमेंट एक अलग हो गया। तो इस डिपार्टमेंट में कई भक्त हैं जो मिलकर के सेवा करते हैं और अपनी अपनी सेवा निश्चित करते हैं कि किस समय किसकी सेवा है, इसलिए सबको जो है अपनी आवश्यक कार्य भी करने होते हैं तो सबके सबका समय निश्चित किया जाता है कि आपकी ये सेवा इतने समय पर हा? तो ये ड्यूटी डिपार्टमेंट अलग है जो हर मंदिर में मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूटीज हैं ये केवल वो नहीं है कि एक लकड़ी हो या पत्थर हो, ऐसे नहीं है, है ना। तो उनको जो है उनकी सेवा में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए, ये चिंता जो है ये सब भक्तों की होती है, है ना। और विशेष रूप से ड्यूटीज डिपार्टमेंट के भक्तों की होती है ये सेवा, और जो हेड पुजारी हैं उनका जो है पूरा उनको देखभाल करना है कि भगवान की अर्चा विग्रह की ठीक से सेवा हो रही कि नहीं, कहीं पर कुछ है कमी तो नहीं है, कहीं पर कोई छिद्र तो नहीं है। तो ये सब ये वैष्णवों का कार्य होता है जो कि समझ पाते हैं कि अर्चा विग्रह जो है वो बहुत सेंसिटिव है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सेंसिटिव को, संवेदनशील है, अर्चा विग्रह बहुत संवेदनशील है, है ना। तो उनकी जो है पूजा में, उनके भोग में, उनकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है, कहां पर कमी है, है? तो उनको ऐसी मतलब सोचना पड़ता है, जैसे कि एक बच्चा है वो बोल नहीं सकता है, तो माता को जो है कितनी चिंता होती है कि बच्चा तो नहीं बोलेगा, बच्चा तो नहीं बताएगा, लेकिन तकलीफ होगी तो माता को चिंता होती है, है? कि बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। ऐसे जो है डीटीज के जो है अर्चा विग्रह की जो सेवा है उसमें जो भक्त लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं, है ना। तो ये है वैष्णव धरातल। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मंदिर में 6 बार आरात्रिक की जाती है और अर्चा विग्रह को प्रायः भोजन चढ़ाकर बांटा जाता है। 6 बार आरात्रिक की जाती है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आरती उतारते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। तो आरती उतारने का मतलब क्या है, आरती का मतलब क्या है, आरती है? हाँ, किसने कहा, और आरती क्या, आर्त से आए, आर्त माने कष्ट, जो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त माने जो कष्ट में पड़ा हो, और आरती माने कष्ट दुख, और उतारना का मतलब क्या है, आप उतार रहे हैं, किस में उतार रहे हैं, ज्योति में, चारों तरफ से जो आपने आग जो घुमा रहे हैं भगवान के चारों तरफ, तो ये क्या माना जाता है कि भगवान की आरती, भगवान का जो कष्ट है आपने इसमें उतार लिया। आप सुन रहे, लोगों की नजर लगती है, भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार किया है, लोगों की नजर लगती है ना, तो वो नजर भी जो है क्या है, आप उतारते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आरती उतारते हैं। हम लोग बोलते हैं आरती करते हैं, आरती करते नहीं वास्तव में, आरती उतारते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में बोलते हैं आरती करो भाई। आरती करना का तो मतलब है अपना दुख बताना भगवान को, लेकिन तो उल्टा है, आरती उतारने का मतलब भगवान का दुख इसमें उतारना है, किसमें उतारना है, इस ज्योत में, इस अग्नि में आपने भगवान का दुख उतार लिया, और अब फिर आरती लेते हैं, अब वो जो आ गया वो अपने सिर में ले लिया, हमें भगवान का जो दुख है अपने सिर में ले लिया, ठीक है। तो सेवकों का ये कार्य होता है, है कि भगवान को जो है जितने भी दुख और कष्ट हैं वो आपने इसमें उतार लिए, अब इससे आप अपने सिर में आप ले रहे हो, ये भगवान का कष्ट हमें मिले, भगवान को जो है कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो आरती उतारना ये है। तो आरात्रिक, वैसे असली शब्द तो आरात्रिक है, तो विचार करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आरती उतारने का ये मतलब है, है ना। इसके बाद फिर आरती उतारी, उसके बाद फिर स्नान कराते हैं, तो जो पानी घुमाते हैं ये माना जाता है कि आपने उनके पूरे शरीर में स्नान कराया, उनको पानी से स्वच्छ कर दिया है। इस पर रुमाल क्यों करते हैं, अब पोछा लगाना है उनके, तौलिया जैसे स्नान के बाद तौलिया, तो वो पोछा लगाते हैं। तो ये जो है मतलब एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है, उसकी देखभाल की जाती है, माँ भी देखभाल करती है, कभी माँ बच्चे की नजर उतारती है, है ना। उसी प्रकार से भक्त लोग क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि मंदिर में 6 बार आरात्रिक की जाती है और अर्चा विग्रह को प्रायः भोजन चढ़ाकर प्रसाद बांटा जाता है। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा विधि विधानों के अनुसार निर्धारित अर्चा विग्रह की पूजा विधि यही है। तो यहां प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, तो ये जो है विधि, इसको कहते हैं पांचरात्रिक विधि। पांचरात्रिक विधि भी जो है एक होती है जिसमें की परंपरा से आ रही है, ये भी एक परंपरा है ना। एक भागवत विधि की परंपरा है, दूसरी पांचरात्रिक विधि की परंपरा है, ठीक है ना। जो हमारी जो गुरु परंपरा है वो किस विधि की है, भागवत विधि की है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ संदेश, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ संदेश। तो भागवत विधि या शिक्षा की विधि से जो है ये परंपरा बनाई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, ठीक है ना। तो इसलिए कई लोग जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, और कई लोग जो है इसका विरोध करते हैं, कहते हैं सही नहीं है। लेकिन ये जो है भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो है जो बनाई है वो बड़ी सूक्ष्म विचार के द्वारा बनाई है, बहुत सूक्ष्म विचार है इसमें, है ना, कि कैसे जो है किसी व्यक्ति के संदेह को जो है किसी व्यक्ति ने दूर किया, चाहे वो एक मिनट के लिए मिला हो, लेकिन वो जो है उससे जो है परंपरा बनाई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। लेकिन पांचरात्रिक विधि की भी परंपरा है ना। तो प्रभुपाद जी को जो है जो पूजा की विधि उन्होंने जो सीखी है वो अपने पिता से सीखी है। तो पांचरात्रिक विधि के अनुसार अगर प्रभुपाद के गुरु माने जाए तो कौन है, गौर मोहनडे, आप समझे। तो एक वो भी परंपरा है पांचरात्रिक विधि के अनुसार, है ना। और प्रभुपाद जी कहते दोनों जो है साथ-साथ चलना चाहिए, दोनों साथ-साथ चलना चाहिए। जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, रेलगाड़ी की दो पटरियां होती हैं, तो दोनों पर जब दोनों सही हो तभी तो रेलगाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से पांचरात्रिक विधि भागवत विधि दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो मंदिर में जो है भागवत विधि के अनुसार भी जो है भक्त लोग करते हैं भक्ति, और पांचरात्रिक विधि के अनुसार भी करते हैं। तो सब भक्तों को आवश्यक है कि मंगल आरती में भाग लें। तो जो भक्त पूजा देख रहे हैं तो उनको भी जो है पूजा का लाभ मिलता है, उसका फल मिलता है। तो हम जरूरी नहीं कि हर भक्त जो है पांचरात्रिक विधि के अनुसार भगवान की पूजा करें। अगर पूजा देखते भी हैं तो छठवा हिस्सा यानी 16% छठवा हिस्सा 16% आपको भी जो है फल मिलता है पूजा का, अगर आप देखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत क्लास में बैठना भी जरूरी है, मंगल आरती में आना भी जरूरी है। मंगल आरती में जब आप आते हैं, कीर्तन करते हैं और दर्शन करते हैं, आरती का पूजा का दर्शन करते हैं, तो पांचरात्रिक विधि के अनुसार आप कर रहे हैं भक्ति और भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत विधि के अनुसार भी भक्ति कर रहे हैं। तो दोनों साथ साथ जरूरी हैं। एक पटरी में रेलगाड़ी नहीं चलती है ना। तो प्रभुपाद ने दोनों बताया। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा संप्रदाय मां देवेंद्रपुरी की ही शिष्य परंपरा में आता है। प्रभुपाद जी बहुत, देखिए तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी बहुत क्या है, सचेत हैं, हमें सचेत करते हैं कि माधवेंद्रपुरी की जो कथा है वो केवल ऐसी नहीं है कि आपने सुन ली पढ़ ली, बल्कि ये क्या है, ये हमारी प्रामाणिक विधि है जो मतलब आ रही है हमें, जो विधि हमें जो प्राप्त हुई है कहां से आ रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं माधवेंद्रपुरी से आ रही है ना, माधवेंद्रपुरी आगे, जिनका संबंध मधु संप्रदाय से था। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में हैं, जिन्हें माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी थी, इसीलिए हमें श्री माधवेंद्रपुरी के चरण चिन्हों का अनुसरण बहुत सावधानी से करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल का विग्रह स्थापित किया, किस तरह उन्होंने केवल एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी की और उसे संपन्न किया, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, किस कथा में जो है बहुत से बिंदु हैं जो हमको बड़ी गंभीरता से समझने हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करनी है, प्रेरणा। और प्रेरणा क्या है कि माधवेंद्रपुरी को जिस दिन गोपाल जी ने सपना दिया था तो वो रात्रि बीत चुकी थी, रात्रि के अंत में सपना दिया था, और जैसे ही उनका सपना टूटा और वो जागृत अवस्था में आए, वैसे तुरंत वो जो है उठ करके दौड़े और दौड़ करके सब लोगों को दौड़ाया, सबको दौड़ाया, चलो चलो चलो, गोपाल जी कष्ट पा रहे हैं, गोपाल जी को निकालना है, गोपाल जी का कष्ट दूर करना है, चलो चलो चलो, मतलब क्या हो गया, एक मूवमेंट, एक आंदोलन। जैसे मकान में आग लगे तो कैसे भागता है व्यक्ति, निकलना, अपनी सुरक्षा करनी है, मकान की आग बुझानी है, आग बुझानी है, कैसे अपनी सुरक्षा करें, कैसे आग बुझाएं। तो ये कोई ये नहीं कि चलो करेंगे, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक दिन में गोपाल जी को जो है निकलवा दिया उन्होंने, गोवर्धन के ऊपर स्थापित भी कर दिया। और जो कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था, एक शिला जो है उन्होंने जमाई जो कि बिल्कुल क्षितिज हो, हॉरिजॉन्टल, और एक शिला उन्होंने जमाई वर्टिकल, उसके सहारे गोपाल जी को स्थापित किया, है ना। अब दिवाली वाल बनाने का भी जो कि साधन नहीं था, तो वो बाड़ा बना दिया कांटों का और लकड़ी का और घास फूस का, और एक ही दिन में जो अन्न कुछ भी करा दिया, है ना। कितने कितने घरों से जो है उन्होंने भोग बना करके और उनको जो है पहाड़ बना दिया गोपाल जी के लिए, भोग का एक पर्वत बना दिया अन्नकूट, एक ही दिन में सब कुछ कर दिया, है ना, इमरजेंसी, है ना। गोपाल जी जो है कितने कितने सालों से गर्मी का कष्ट भोग रहे हैं, 108 घड़ों से ठंडे जल से स्नान कराया, और फिर पहाड़ भोजन का पहाड़ दे दिया गोपाल जी को खाने के लिए, कितने सालों से नहीं खाया है, तो वो सब जो है क्षतिपूर्ति हो करने के लिए इतना। और गोपाल जी ने भी दिखाया कि हाँ मैंने सब खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं, और फिर उतना हो गया। ये भी मां देवेंद्रपुरी को पता चला कि जितना पहाड़ था जो भोजन का, वो गोपाल जी ने सब खाया और फिर से वो हो गया। ये भी मां देवेंद्रपुरी ने देखा, और गोपाल जी ने दिखाया कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं तुम्हारी सेवा को, है ना। तो ये जो है मतलब भावना है, एक वैष्णव की ये भावना होती है कि जल्दी दौड़ो, भगवान को कुछ कष्ट हो जल्दी दौड़ो, जल्दी करो, ये चीज जो होती है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सावधान थे कि ठीक समय पर उनका संग बजना चाहिए, उनका दर्शन होना चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए, उनका श्रृंगार होना चाहिए, है ना, ठीक समय पर, है ना। तो पहले से घड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए, समय से पहले आप जो है सब तैयारी करो जिससे ठीक समय पर काम हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें जो है अर्चा विग्रह की चेतना है। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी की और उसे संपन्न किया इत्यादि। आगे अमेरिका तथा यूरोप के धनी देशों में हम अर्चा विग्रहों की जो स्थापना करें उसे श्री मां देवेंद्रपुरी के कार्यों के ही अनुसार होना चाहिए। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के धनी देश हैं, तो वहां पर तो सब साधन है, वहां पर क्या कमी है, और थोड़ा सा इशारा करो तो सब जो है काम होते हैं, आनंद फानन तुरंत सब काम होते हैं, क्योंकि उन लोगों में ऐसी भावना है कि किसी काम में अगर लग गए तो फिर जी जान से लग गए, वो लोग ऐसे हैं, है ना। तो उनके अंदर जो है ब्राह्मण के जो गुण है पहले से ही छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं उनके अंदर जो है ब्राह्मण का जो गुण है वो केवल जगाना है, विकसित करना है, केवल उनको जो है वो चेतना देनी है कि ये जो है आपके भगवान है और आपको जो है इनकी आवश्यकता पूरी करनी, इनकी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है, और जैसे वो आवश्यकता समझेंगे तो आनंद फानन में सब काम होगा, तुरंत काम होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब कैसे स्थापना की, अब जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं माधवेंद्रपुरी ने एक दिन में स्थापना की, तो आप भी कह सकते हैं प्रभुपाद ने क्या किया, 108 मंदिर बनवा दिए कितने समय में, 12 साल में, अपने जो है जीवन के अंतिम जो 12 साल थे 108 मंदिर बनवा दिए, और कहां कहां जो है प्रभुपाद दौड़े, पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमा करी, 12 साल के अंदर 108 मंदिर बनवा दी, है ना। और फिर प्रभुपाद ने जो है प्रार्थना की, इन्हीं से प्रार्थना की कि मैंने आपको बुला लिया है गोलोक धाम से, मैंने आपको बुला लिया है, अब इन म्लेच्छों को बुद्धि दीजिए, ये आपकी सेवा भी कर पाएंगे, इनके पास बुद्धि नहीं है सेवा करने की, आप ही इनको बुद्धि देना ताकि सेवा आप आपकी सेवा कर पाए। तो भगवान से प्रार्थना की है ना। तो ये जो है जो माधवेन्द्रपुरी का भाव है, तो प्रभुपाद जो है कम थोड़ी है ना। तो ये लेकिन प्रभुपाद तो जो है माधवेन्द्रपुरी का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये विनम्रता है प्रभुपाद की, माधवेन्द्रपुरी का नाम ले रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विग्रह के सारे सेवकों को सर्वथा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए है ना। तो योग्य ब्राह्मण का मतलब क्या है? वैष्णव, वैष्णव की योग्यता होनी चाहिए है ना। और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने और उसे भगवान का दर्शन करने आए हुए भक्तों में बांटने की वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए है ना। तो यह है विनम्रता और दया, जीव दया। क्या है वो? नामे रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवन और यही छाणी ना ही धर्म सुनो सनातन है ना। तो ये जीव पर दया, जीवों पर दया करना, जो दर्शन के लिए आए हुए हैं उनको जो है प्रसाद बांटना। तो यहां पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी है? क्या जगत गुरु? जगत गुरु किसे कहा जाता है? जगत गुरु का मतलब है जो विभिन्न स्थानों में यात्रा करे, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में यात्रा करे और शिष्य बनाए, ठीक है ना। जगत गुरु का मतलब ये है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में यात्रा करे और शिष्य बनाए है ना। बहुत से लोग अपने को जगत गुरु कहलाते हैं लेकिन उनको जो है अभी पृथ्वी के अलग अलग देशों का भी कुछ पता नहीं, अंदाजा भी नहीं कि कहाँ कौन से स्थान है, कहीं जाते नहीं है ना। जगत गुरु का तो मतलब ये है। अब बाकी जो है अभी आजकल तो सब जो है केवल टाइटल बन गई है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अब तो जो है केवल एक नाम बन गया है ना। जैसे गोस्वामी है ना, तो ये गोसाई ये भी जो है मतलब जाति बन गई, जात गोसाई है ना। तो अब तो सब जो है ना मतलब वो है, एक कलयुग का प्रभाव है ना। तो उसमें केवल दिखावा रह गया है, है? तो लोग जो है वो वंश परंपरा में जो है अपने को वही मानते हैं कि हम भी गुरु हैं है ना। तो गुरु का लड़का भी गुरु है ना, उसका लड़का गुरु, सब गुरु ठीक है ना। तो सब कुछ तो जो है अब वैसे ही चल रहा है कि नहीं। ब्राह्मण है ना, तो बस जो ब्राह्मण परिवार में पैदा है तो ब्राह्मण है। और वो फिर ये भी कहते हैं कि तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए तो तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन नहीं। तो सब कुछ तो अब कलयुग के प्रभाव से यह ज्ञान फैला हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, किसने हाथ उठाया? आप बोलो। काम नहीं कर रहा माइक, ऑन नहीं किया गया? अच्छा वैसे ही बोलो, वैसे ही बोलो। जोर से बोलो, जोर से। इनका प्रश्न है कि डीटीएच डिपार्टमेंट जैसे डीटीएच की सेवा के लिए फिर और क्या कह रहे हैं, बैनर्स अच्छा अच्छा नहीं, जो अर्चा विग्रह हैं तो इनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इनके लिए कुछ विशेष निश्चित किया गया है कि भाई इनकी सेवा की जाएगी। तो ये जो है अर्चा अवतार कहलाता है, ठीक है ना। और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई इनकी, तो वो है। और बाकी जो है जो फोटो हैं वो पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं उनको, भगवान अगर चाहें तो फोटो में भी प्रकट हो सकते हैं, तो वो भक्त के भाव के अनुसार वो फोटो में भी अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं, फोटो को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन फोटो के लिए इतने नियम नहीं है, इतना बंधन नहीं है कि आप करो या ना करो, ठीक है ना। अगर आप जो है इतने योग्य नहीं है कि भगवान के अच्छा विग्रह की पूजा कर सकें तो आप घर में फोटो रख सकते हैं, तो फोटो में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना बंधन नहीं है कि आप कब करेंगे कब नहीं करेंगे। जब आप भोजन करते हैं तो फोटो को भोग लगा लो, तो ये इसमें बड़ी छूट है, ठीक है ना। वैसे जगन्नाथ जी भी हैं, जगन्नाथ जी और गौरनेता भी बहुत दयालु हैं, तो प्रभुपाद जी जो है लॉस एंजल्स में जब जगन्नाथ जी की अर्चना की स्थापना की थी तो उन्होंने स्वयं देखा कि जगन्नाथ जी जो है स्वयं आ गए अपनी पूजा कराने के लिए, और बड़े नाटकीय ढंग से आए, ड्रामेटिक वे में आए और प्रभुपाद ने देखा कि जगन्नाथ जी आ गए अपनी पूजा कराने के लिए, क्योंकि इन मिलेच्छों को जो है कुछ भी पता नहीं है कैसे पूजा होगी, तो जगन्नाथ जी पहले आ गए, बहुत दयालु हैं। तो जगन्नाथ जी के लिए भी इतने बंधन नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा है, लक्ष्मी नारायण की पूजा है, तो इसमें जो है मतलब बहुत बंधन है, आपको जो है बहुत विधि पूर्वक और सावधानी पूर्वक आपको करना है, ठीक है ना। और कुछ धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। हो हरे कृष्ण।